यूहन्ना की मार्फत इंजील बाब 7। इसके बाद ईसा ने गलील के इलाके में इधर उधर सफर किया। वो यहूदिया में फिरना नहीं चाहता था क्योंकि वहां के यहूदी उसे कत्ल करने का मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन जब यहूदी ईद बनाम झोपड़ियों की ईद करीब आई तो उसके भाइयों ने उसे कहा, ये जगह छोड़कर यहूदिया चला जा ताकि तेरे पैरोकार भी वो मौजज़े देख लें जो तू करता है। जो शख्स चाहता है कि अवाम उसे जाने, वो पोशीदगी में काम नहीं करता। अगर तू इस किस्म का मौजज़ाना काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। असल में ईसा के भाई भी उस पर ईमान नहीं रखते थे। ईसा ने उन्हें बताया, अभी वो वक्त नहीं आया जो मेरे लिए मौजू है, लेकिन तुम जा सकते हो। तुम्हारे लिए हर वक्त मौजू है। दुनिया तुमसे दुश्मनी नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे वो दुश्मनी रखती है, क्योंकि मैं उसके बारे में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम खुद ईद पर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जो मेरे लिए मौजू है। ये कहकर वो गलील में ठहरा रहा। लेकिन बाद में जब उसके भाई ईद पर जा चुके थे तो वो भी गया। अगरचे ऐलानिया नहीं बल्कि खुफिया तौर पर यहूदी ईद के मौके पर उसे तलाश कर रहे थे। वो पूछते रहे, वो आदमी कहाँ है। हुजूम में से कई लोग ईसा के बारे में बड़बड़ा रहे थे। बाज ने कहा, वो अच्छा बंदा है। लेकिन दूसरों ने एतराज किया, नहीं, वो आवाम को बहकाता है। लेकिन किसी ने भी उसके बारे में खुलकर बात न की, क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। ईद का आधा हिस्सा गुजर चुका था जब ईसा बैतुल मुकद्दस में जाकर तालीम देने लगा। उसे सुनकर यहूदी हैरतज़दा हुए और कहा, ये आदमी किस तरह इतना इल्म रखता है, हालांकि इसने कहीं से भी तालीम हासिल नहीं की। ईसा ने जवाब दिया, जो तालीम मैं देता हूं वो मेरी अपनी नहीं बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा। जो उसकी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार है वो जान लेगा कि मेरी तालीम अल्लाह की तरफ से है या कि मेरी अपनी तरफ से। जो अपनी तरफ से बोलता है वो अपनी ही इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत वो जलाल बढ़ाने की कोशिश करता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुमको शरीयत नहीं दी, तो फिर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। हुजूम ने जवाब दिया, तुम किसी बदरूह की गिरफ्त में हो, कौन तुम्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। ईसा ने उनसे कहा, मैंने सबत के दिन एक ही मौजजा किया और तुम सब हैरतज़दा हुए, लेकिन तुम भी सबत के दिन काम करते हो। तुम उस दिन अपने बच्चों का खतना करवाते हो और ये रस्म मूसा की शरीयत के मुताबिक ही है, अगरचे ये मूसा से नहीं बल्कि हमारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शुरू हुई, क्योंकि शरीयत के मुताबिक लाजिम है कि बच्चे का खतना 8वें दिन करवाया जाए। और अगर ये दिन सबत हो तो तुम फिर भी अपने बच्चे का खतना करवाते हो ताकि शरीयत की खिलाफ वर्जी न हो जाए। तो फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी के पूरे जिस्म को शिफा दी। जाहिरी सूरत की बिना पर फैसला न करो बल्कि बातनी हालत पहचान कर मुनसिफाना फैसला करो। उस वक्त यरूशलेम के कुछ रहने वाले कहने लगे, क्या ये वो आदमी नहीं है जिसे लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो यहाँ खुलकर बात कर रहा है और कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या हमारे रहनुमाओं ने हकीकत में जान लिया है कि ये मसीह है, लेकिन जब मसीह आएगा तो किसी को भी मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ से है। ये आदमी फर्क है, हम तो जानते हैं कि ये कहाँ से है। ईसा बैतुल मुकद्दस में तालीम दे रहा था। अब वो पुकार उठा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है और उसे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसने मुझे भेजा है। तब उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हाथ न लगा सका क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था। तो भी हुजूम के कई लोग उस पर ईमान लाए, क्योंकि उन्होंने कहा, जब मसीह आएगा तो क्या वो इस आदमी से ज्यादा इलाही निशान दिखाएगा। फरीसियों ने देखा कि हुजूम में इस किस्म की बातें धीमी धीमी आवाज के साथ फैल रही हैं। चुनांचे उन्होंने रहनुमा इमामों के साथ मिलकर बैतुल मकद्दस के पहरेदार ईसा को गिरफ्तार करने के लिए भेजे, लेकिन ईसा ने कहा, मैं सिर्फ थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। उस वक्त तुम मुझे ढूंढोगे मगर नहीं पाओगे, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम नहीं जा सकते। यहूदी आपस में कहने लगे, ये कहां जाना चाहता है जहां हम उसे नहीं पा सकेंगे? क्या वह बैरूने मुल्क जाना चाहता है, वहां जहां हमारे लोग यूनानियों में बिखरी हालत में रहते हैं? क्या वो यूनानियों को तालीम देना चाहता है? मतलब क्या है जब वो कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे मगर नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? ईद के आखिरी दिन, जो सबसे अहम है, ईसा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज से पुकार उठा, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो मुझ पर ईमान लाए वो पिए। कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नहरें बह निकलेंगी। जिंदगी के पानी से वो रूहुल कुदस की तरफ इशारा कर रहा था, जो उनको हासिल होता है जो ईसा पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो उस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ था क्योंकि ईसा अब तक अपने जलाल को न पहुंचा था। ईसा ने ये बातें सुनकर हुजूम के कुछ लोगों ने कहा, ये आदमी वाकई वो नबी है जिसके इंतजार में हम हैं। दूसरों ने कहा, ये मसीह है, लेकिन बाज ने एतराज किया, मसीह गलील से किस तरह आ सकता है? पाक कलाम तो बयान करता है कि मसीह दाऊद के खानदान और बैतलहम से आएगा, उस गांव से जहां दाऊद बादशाह पैदा हुआ। यूं ईसा की वजह से लोगों में फूट पड़ गई। कुछ तो उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसको हाथ न लगा सका। इतने में बैतुल मकद्दस के पहरेदार, रहनुमा इमामों और फरीसियों के पास वापस आ गए। वो ईसा को लेकर नहीं आए थे, इसलिए रहनुमाओं ने पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? पहरेदारों ने जवाब दिया, किसी ने कभी इस आदमी की तरह बात नहीं की। फरीसियों ने तंजन कहा, क्या तुमको भी बहका दिया है क्या? क्या रहनुमाओं या फरीसियों में कोई है जो इस पर ईमान लाया हो? कोई भी नहीं, लेकिन शरीयत से नावाकिफ ये हुजूम लानती है। इन रहनुमाओं में निकोदिमुस भी शामिल था, जो कुछ देर पहले ईसा के पास गया था। अब वो बोल उठा, क्या हमारी शरीयत किसी पर यूं फैसला देने की इजाजत देती है? नहीं, लाजिम है कि उसे पहले अदालत में पेश किया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उससे क्या कुछ सरजद हुआ है। दूसरों ने इतराज किया, क्या तुम भी गलील के रहने वाले हो? कलाम मुकद्दस में तफ्तीश करके देख लो कि गलील से कोई नबी नहीं आएगा। ये कहकर हर एक अपने अपने घर चला गया।